نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. تفسیر دیکھتے ہیں آج کے سبق میں. پہلے جو آیات ہیں، آیت نمبر 272, 273, 274، ان میں وہی جو پچھلی بحث چلی آ رہی تھی صدقے سے متعلق، اس کو ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 275 سے ربا کے بارے میں آیات شروع ہو جائیں گی، جو مکمل ہوں گی آیت 280 پہ جا کے. اور آیت 281 آج ہم وہ آیت پڑھیں گے، وہ عظیم آیت جو آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی ہے نا. کیونکہ دیکھیں جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، جس لحاظ سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا، یہ نزولی ترتیب تھوڑا ہی ہے، نازل تھوڑا ہی اس طرح ہوا تھا کہ سورہ بقرہ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران نازل ہوئی. ایسے تو نہیں ہوا نا، سب سے پہلے تو سورۃ الفلق کی سورہ علق کی شروع کی آیات نازل ہوئی تھی نا اقرا سے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ جو اس وقت جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس طرح جو سورت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو. کوئی آیت اترتی تھی یا چند آیات اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے نا، آیت 281، یہ ہے آخری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو آج ہم اس آیت کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. پہلے ہم صدقہ کے بارے میں آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا، نہیں ہے، علی کا ہدا ہوں، آپ پر ان کی ہدایت. کن کی ہدایت؟ جو غیر مسلم ہے آپ کے ذمے. آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی، آپ کے ذمے ان لوگوں کی ہدایت نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کو ہدایت دینا آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ اللہ کے پر ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. تھوڑا سا اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور یہ آیت اتری. یعنی کیا کرتے تھے مسلمان؟ دیکھیں ان کے تو رشتہ دار ہوتے تھے جو غیر مسلم ہوتے تھے، تو اب وہ کہتے تھے یہ ہمارے رشتہ دار مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ مطلب ان کے اوپر صدقہ کریں. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے، تو یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ اب ہر سائل کو دو، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو. تو اس کے اندر اس آیت میں جواب ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ کیا ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کبھی ان کی چیریٹیز مانگتی ہیں، کبھی کوئی ایسی یعنی ڈیزاسٹر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، یا کوئی یتیم بچے ہیں ان کے لیے، یا کوئی بھوک ایسی آ جاتی ہے کہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم اپنا صدقہ دیں ان کو کہ نہیں دیں؟ ہم کیوں دیں؟ یہ تو غیر مسلم ہے. اب غیر مسلم چاہے کافر مر رہا ہو لیکن ہم کہیں گے نہیں تو یہ کافر ہے نا تو ہم نے اس کو نہیں دینا. بات یہ ہے اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اے نبی آپ کو اوپر رسپانسبلٹی تھوڑی ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں. کیونکہ دیکھیں مسلمان کیا سوچتے تھے کہ اگر ہم ان کے اوپر صدقہ نہیں کریں گے, ان کے اوپر سپینڈ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ کبھی مسلمان ہو جائے. یہ بھی ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے نا کہ یہ تھوڑا مطلب دیکھو کہ ہمیں صدقہ ہی نہیں ملتا کیونکہ ہم مسلمان نہیں تو وہ مسلمان ہو جائیں. تو اس وجہ سے ان کی نیت یہ ہوتی تھی, اچھی نیت تھی. یا وہ پھر کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو جب مسلمان ہی نہیں ہم کیوں کریں. جیسے ہم میں سے بعض لوگ جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اب وہ فلاں ہیں وہ تو دین پہ ہے ہی نہیں, وہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بس ان کو تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ایسے کرتے ہیں تو بس ابھی ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا, یا ان کے گھر میں تو یہی چیز چلتی ہے یہ تو ایسے ہیں تو اب ہم ان کے اوپر نہیں کچھ سپینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اوپر کسی کو ہدایت دینا تھوڑی ہے, اللہ ہے جو ہدایت دینے والا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں لیکن وہ نہیں لے کر آئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بس نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت دے دیں, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے آپ اللہ سے مانگا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے, کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں ہے, وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے ہدایت سے موڑ دے. اس لیے ہر وقت ڈرتے رہیں, یہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا, ہمارے دلوں کو ٹیڑے نہ کر دینا. کیونکہ یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے, کوئی اپنے آپ میں اتنا اپنے آپ کو نہیں سمجھے کہ ہم تو بس ہدایت پہ آ گئے اب ہمیشہ ہم نے اسی پہ رہنا یا ہم تو بڑے کارنامے کر رہے ہیں. نہیں, کسی کا بھی نہیں پتا کہ کون مرتے دم تک ہدایت پہ رہتا ہے اور کون نہیں. تو التجائیں کیا کریں, فخر کرنے کی بات نہیں ہے, التجائیں اللہ کے سامنے رکھا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ میرا دل تیری دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے. واقعی انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے, دو کریم انگلیوں, جدھر کو چاہے پھیر دے, جدھر چاہے پھیر دے. چاہے تو کسی کا دل, آج آپ کسی کو بہت برا سمجھ رہے ہیں فلاں ایسا ہے پھر ہم نے نہیں اس کو کچھ دینا, اللہ اس کو ہدایت پہ موڑ دے. اور چاہے تو ہم جو اتنے بڑے بنے بیٹھے اللہ ہدایت سے, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہدایت سے دل کو ٹیڑھا کر دے. اللہ کے بس میں ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے, نہ کسی کو ہدایت دینا نہ خود ہدایت پہ قائم رہنا. اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو آپ اس چیز کو بیچ میں مت لاؤ کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے, اور اس بیسس پہ کسی کی ہیلپ کرو. کتنی وسعت ہے اسلام میں, کس قدر ہمدردی کی فضا ہے کہ انسانیت سے ہمدردی کرو, سمندر جیسا حوصلہ پیدا کرو, ایسے وسیع ہو جاؤ جیسے سمندر ہے. سمندر کو دیکھیں پرواہ نہیں ہے, اس کا پانی دریاؤں میں بہے, برف کی صورت میں کہیں پہاڑوں پہ جم جائے یا بادلوں کی صورت میں فضا میں اوپر اٹھ کے چلا جائے, اس کو نہیں پرواہ, یا ٹنوں پانی کہیں چلا جائے, وہ ہر ایک کو سراب کرتا ہے. سمندر سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح بادلوں کی بھی مثال ہے, آپ بادلوں کی طرح بن جائیں. دیکھیے بادل جب برستا ہے کیا وہ یہ دیکھ کے برستا ہے فلاں اللہ کو مانتا ہے میں اس پہ برسوں گا اور یہ نہیں مانتا میں نے نہیں اس پہ برسنا, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, مومن ایسا ہوتا ہے بادل کی طرح, ہر ایک کے اوپر برستا ہے. اور جب میرے اللہ نے کہہ دیا تم کون ہوتے ہو روکنے والے صدقے کو, ہاں ہدایت میرے پاس ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, تم کون سے ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے ہم نے اس کو نہیں دینا اس کو دینا. نہیں, وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے, جو مال میں سے تم خرچ کرتے ہو تمہیں اپنا فائدہ ہے اس میں, تمہیں اس سے کیا, देखिए अब यहाँ पे चार बातें नहीं, तीन बातें बताई गई, अगर चौथी अंतुम ला तुज़लमून को भी करते हैं तो चार बन गई, लेकिन अगर वमा तुनफिकू तक रहे तो तीन बातें बन गई। तीन बातें ऐसी अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि देखो मुसलमान, तुम अपनी मुट्ठी को खोलो गैर मुस्लिम के लिए, जो सवाल करता है, जो जरूरतमंद है, जो मिस्कीन है, जो पिसा हुआ है, उसके लिए अपनी मुट्ठी खोलो। तीन इंसेंटिव दिए, तीन रीजनिंग तीन तरह से दी। देखो तुम तो खर्च करते हो ना अपने लिए, अपने सवाब के लिए, तो सवाब तो तुम्हें मैंने देना है, तुम्हें इससे क्या आगे अगला मुसलमान है या नहीं। सुभान अल्लाह, देखें कैसी बात अल्लाह ताला ने। वो देखो इंसान फिर सोचे कि ये अल्लाह ताला किन के लिए वकालत कर रहे हैं, बताएं है? कि इनको दो, वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। और अल्लाह के साथ शिर्क करना क्या है? जैसे उसको गाली देना। ये वो है जो कहता है मैंने अल्लाह को नहीं मानना, जो उसको मानने से इनकार करता है। ये वो है जो अल्लाह को छोड़ के जाके औरों के आगे सजदे करता है। अल्लाह कहता है इसको भी दो। सुभान अल्लाह, तुम दो, तुमने देना किसके लिए? अपने सवाब के लिए, तुम इसीलिए खर्च करते हो ना, तो दो इनको भी। ये है मुसलमान, ये है मोमिन, जो सारी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक क्या है? अय्यालुल्लाह है, अल्लाह का कुंबा है। सारी मखलूक, इवन आप एक कुत्ते को पानी पिलाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको अजर मिलता है। हर तार के साथ, एक हदीस है ना, हर तार के साथ, मतलब क्या, हर जानदार के साथ भलाई करो, हर एक जानदार के साथ, चाहे वो फूल है, पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, कुत्ते जैसा जानवर भी है, भलाई लेकिन करो। तो मोमिन कितनी प्यारी शख्सियत होती है ना, वो नहीं ये देख सकता है कोई तड़प रहा है और हम कहें नहीं मुसलमान हो तो फिर है। हाँ मुसलमान के आपके पर दो हक हो जाते हैं, एक इंसानियत के नाते और एक दीन के नाते, क्योंकि वो इंसानियत में भी आपके साथ शरीक है और आपके दीन में भी आपके साथ शरीक है। लेकिन ये नहीं है कि अपना हाथ दूसरों से रोक लो। फिर नंबर टू, अल्लाह ताला ने क्या रीजनिंग दी, क्यों खर्च करो? वमान तुन्फिकूना इल्ला बितिगा वजहिल्लाह, और तुम तो खर्च नहीं करते मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा मिले, अल्लाह का दीदार मिले। वजहिल्लाह, अल्लाह का चेहरा है ना, इसे दो माने ले सकते हैं आप। एक ये कि तुम तो अल्लाह के दीदार के लिए खर्च करते हो ना, कि अल्लाह ताला इसलिए मैं देती हूँ कि एक दिन तू जन्नत में मुझे अपना दीदार कराए, मैं इसलिए खर्च करती हूँ। तुम तो ये चाहते हो ना, फिर तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो? और दूसरा ये, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम देते हो ना, कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। हाँ तो फिर तुम दो, फिर अल्लाह ही तुम्हें कह रहा है कि तुम दो इनको, नॉन मुस्लिम्स पे खर्च करो। और वजह पे तवज्जो भी आ जाती है कि उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। तुम तो ये चाहते हो ना मैं अल्लाह की नजरों में नंबर बना लूं, अल्लाह के आगे नंबर बना लूं अपने, है ना? इंसानों के आगे तो नंबर बनाते रहते हैं। आपका खर्च करने का मकसद क्या होता है? मैं अल्लाह के आगे नंबर बनाऊं, मैं अल्लाह की नजरों में अच्छी हो जाऊं। तो तुम अल्लाह की नजरों में तो अच्छी हो जाओगे जब तुम खर्च करोगे, तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो? वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ्फा इलैकुम वअंतुम ला तुज़लमून, और जो भी तुम खर्च करोगे माल में से पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें। ये थोड़ी है कि अगर गैर मुस्लिम पे खर्च करोगे तो तुम्हें वहां पे नहीं दिया जाएगा, मुसलमान पे खर्च करोगे तो वहां पे ज्यादा दिया जाएगा। नहीं, तुम जिसके लिए खर्च कर रहे हो ना उसने देना है, वो कह रहा है मैं पूरा पूरा दूंगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। कोई जुल्म, जुल्म क्या होगा कि अगर अब पूरा पूरा अजर ना दिया जाए तो वो जुल्म हो गया ना। जुल्म क्या होता है? किसी के हक में कमी करना। तो तुम पे कोई कोई कुछ कमी नहीं की जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारा अजर मारा नहीं जाएगा। भला और कौन सा मजहब है जिसमें इस कदर टॉलरेंस है, इस कदर इंसानी हमदर्दी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि उनके पास एक मेहमान आया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे, तो खाना रखा। इससे पहले कि वो खाना शुरू करता उससे पूछा कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो? वो कहता नहीं मैं तो नहीं मानता अल्लाह को। गल लगे जाओ फिर चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें खाना खिलाता, चले जाओ यहां से। तो वो उठ के चला गया, फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आ गए। ए इब्राहिम, 40 साल से ये मेरी नाफरमानी कर रहा था, मुझे नहीं मान रहा था, तो मैंने तो इसके ऊपर अपना रिस्क बंद नहीं किया। एक दिन ये तेरे पास आ गया तो तूने कह दिया कि मैं नहीं खिलाता। सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े गए, कहा कि वापस आ जाओ। वो कहने लगा क्यों, आप क्यों बुला रहे हो? फरमाया कि तुम्हारे लिए तो वही आ गई। वो इतना हैरान हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह ताला इस तरह, वो इतना रहीम है, इतना करीम है, इतने सालों से अल्लाह की नाफरमानी की, इंसान का देखे हौसला बस इतना ही होता है ना। अल्लाह अपना रिस्क नहीं बंद करता, इंसान के पास एक दिन कोई सवाल ही आ जाए तो वो अपना रिस्क बंद कर देता कि नहीं देता तुझे। और फिर सदका किसके लिए, तो ये आपको पता चल गया कि गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करो, और किसके ऊपर खर्च करो? लिल फकरा, उन फकीरों, यानी फकीर का मतलब ये नहीं कि जो आपके आगे हाथ फैलाता है, मगर वो तंग दस्त, अल्लदीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में। घेर लिए गए का मतलब क्या, रोक लिए गए। किसने रोका उनको? फी सबीलिल्लाह ने, यानी फी सबीलिल्लाह कामों ने उनको रोक लिया। वो कौन से काम होते हैं जो फी सबीलिल्लाह काम होते हैं? जाती कोई उनकी मसरूफियात नहीं थी कि वो अपनी कोई सी मसरूफियात में हो, नहीं, फी सबीलिल्लाह काम कौन से हैं? दीन के काम। दीन के कामों ने उनको रोक लिया। किस चीज के से रोक लिया? कमाई करने से। देखिए बाज लोग ऐसे हैं ना, कई स्कॉलर्स हो सकते हैं, कई इमाम मस्जिद हो सकते हैं, कई और लोग हो सकते हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया, और ऐसा वक्फ किया कि अब उनके पास टाइम नहीं कि वो जॉब करें, उनके पास टाइम नहीं है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए उसके लिए टाइम चाहिए ना, तो ये लोग क्या है, या तो ये दीन के लिए टाइम दे सकते हैं, जाहिर है वो भी एक फुल टाइम जॉब है, और या फिर ये बिजनेस कर लें, कमाइयां कर लें। तो अब क्या है, कमाई करने का तो इनके पास वक्त है नहीं, फुल टाइम डेडिकेटेड है दीन के लिए, तो अब इनकी जरूरियात कौन पूरी करेगा? हाँ? तुम पूरी करोगे। तुम लोग जो दुनिया के कमाइयां कर रहे हो, अब तुम्हारे पास दीन का रिसर्च वर्क करने के लिए, या दीन के इशाद के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन के और काम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम जॉब्स करते हो, बिजनेस करते हो और काम करते हो। तो अब तुम क्या करो, तुम कॉम्पेंसेट करो इस चीज को। अब इंसान को गिल्ट होती है ना कि अब मैं क्या करूं, देखिए मैं तो अब इतना काम नहीं कर सकती कि कोई किसी जगह जाए वहां पे जाके लेक्चर दे, दूसरी जगह जाए वहां जाके लेक्चर दे, अब उसके ऊपर खर्चा भी है, सब कुछ है। अब वो उसका, उस बंदे का ये खर्चा कौन उठाएगा? कौन उसके घर को, घर का चूल्हा चलाएगा? तो अब ये इन लोगों का काम है जो दुनिया में कमाइयां कर रहे हैं, वो कॉम्पेंसेट करें, उनकी गिल्ट इस तरह दूर हो सकती है। वो खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने माल से फिर वो इन लोगों के ऊपर स्पेंड करें, ठीक है? ये भी सदका है इन लोगों पे स्पेंड करना जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया वह दीन के लिए। समझ आ गई बात? तो फरमाया लिल फुकरा अल्लदीन उहसिरू फी सबीलिल्लाह, वो फकीर, वो तंग दस्त जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में, यानी जिनको अल्लाह के कामों ने रोक लिया हुआ है, अब वो अपनी, इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कोई काम धंधा दुनिया का कर सके और अपने घर का चूल्हा चला सके। लेकिन इनकी सिफात है, कुछ फोर फोर क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई इनकी। वो फोर क्वालिटीज क्या है? नंबर वन, ला यस्तुतीउ नदरबन फिल अर्थ, उनके पास इस्तात नहीं है कि वो जमीन में दौड़ धूप कर सके, यानी कमाई के लिए खुद निकल सके। जो मैंने अभी आपको बात कही कि जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, जाहिर है उसमें वक्त चाहिए ना, तो उनके पास इतना टाइम कहाँ है? लेकिन दीन भी फुल आपकी कंसंट्रेशन और फुल आपका टाइम मांगता है। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए, या सारा दिन जॉब पे बैठे रहे, शाम को आके एक सफा पढ़ लिया, इससे तो नहीं काम होता ना। तो फिर दीन का काम कौन करेगा? अगर सारे ही बिजनेस और सारे ही जॉबें शुरू कर दें, कौन करेगा दीन का काम? कुछ लोगों को इस तरफ भी तो डेडिकेट होना चाहिए। तो फिर अब माशरे में क्या होता है, एक सोसाइटी में जो लोग अपने आप को इस तरफ डेडिकेट कर देते हैं, उनकी हालत जाहिर है फिर बहुत, इकोनॉमिकली उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास नहीं इतना होता, कहाँ से कमाई करेंगे, क्या करेंगे, वो कैसे उनका घर चलेगा? तो फिर लोग उनको बहुत लुक डाउन करते हैं, बहुत हकीर समझते हैं। आप देख ले हमारे माशरे के अंदर क्या इज्जत रह जाती है, कोई एक मस्जिद के इमाम है या कोई एक जो जो लोग भी दीन की तबलीग का काम करते हैं, आलिम है, ये है, उनकी क्या इज्जत रह जाती है? क्योंकि हम माशरे के अंदर जाहिर ही बात है उन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते, सब लोग उनको एक हकीर सा समझते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं देते, अपने बराबर का नहीं समझते। तो बाकी लोगों का काम है उनकी अपलिफ्ट के लिए कि बाकी लोग सदका करें उनके ऊपर, ये उनकी तरफ से सदका होगा। इसको अब ये ना समझें कि हमने इनके ऊपर बस खैरात कर दिया, ये तो हमारे टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, हमने तो इनको इनके ऊपर नो, वो जो काम कर रहे हैं ना वो आपके हिस्से का काम कर रहे हैं, आपको ये काम भी करना चाहिए था लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो समझ लें आपकी वाली जो जॉब है वो लोग कर रहे हैं, अब आपका काम है उनपे स्पेंड करना, समझे ना। तो उनको इस तरह जलील समझ के, हकीर समझ के कि हम अपने सदके खैरात इनको दे देते हैं, ये बेचारे इस तरह के है ना, चलो इनकी कोई मदद हो जाए। जब हम ऐसा एटीट्यूड करते हैं ना तो इसका मतलब है हम दूसरे को नीचा देख रहे हैं, उनकी अपलिफ्ट करें, उनको ऊपर लेकर आए, ये सोचे हमेशा सदका देते वक्त कि इसकी जरूरत मुझे है। हम पता जब देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हाय चलो मैंने फलां को दे दिया, चलो उस बेचारी की मदद हो जाएगी। नहीं, मदद की मोहताज तो मैं हूं, इसलिए कि मुझे अजर चाहिए अल्लाह से, इसलिए कि मुझे नेकियां अपनी बढ़ानी है, इसलिए कि अल्लाह के पास जाके मुझे जरूरत होगी इन अमाल की, इसलिए मैं फकीर हूं, समझे। जब आप इस सोच के साथ देंगे ना तो ना आपके अंदर तकब्बुर आएगा, ना आप दूसरों को हकीर समझेंगे, ना दूसरों को नीचा समझेंगे, ना अपना कोई एहसान समझेंगे दूसरे पे, ठीक है। तो ये लोग क्या है जमीन में, देखें ये भाग दौड़ नहीं कर सकते, ये वो दीन का वो काम कर रहे हैं जो सबकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपने कंधों पे बाकी सबकी जिम्मेदारी ली हुई है, तो इनका हम पे एहसान है, वरना हमारे दीन का काम कौन करेगा, ठीक है। तो अब इनको माशरे में ऊपर लेकर आए, सबके बराबर करना चाहिए। आज चूंकि ये बात नहीं है, इसी वजह से देख लिया आपने ये अंजाम हुआ कि आज किसी को कहते हैं दीन की तालीम लो तो वो क्या कहते हैं, जो जो अच्छे होते हैं फाइनेंशियली वो कहते हैं लो अब हम ये तालीम लें, यानी अपने आप को समझते हैं कि हम डाउनग्रेड करते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये क्या है, इनकी कौन, इनके पास कौन से कोई पैसे होते हैं, हम तो हर चीज को माल में तोलते हैं ना, कि उसके बाद क्या है, बस एक हैंड टू माउथ जिंदगी गुजरेगी फिर इसकी, तो कोई भी इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो जिस वक्त इन लोगों को आप ऊपर लेकर आएंगे माशरे में, तो लोग खुशी के साथ फिर दीन के लिए भी अपना वक्त निकालेंगे, कि ऐसा नहीं है कि कोई भूखे मरेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी फिर इंतजाम कर रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इनके ऊपर स्पेंड करो, क्योंकि ये नहीं खुद जाके जॉब्स कर सकते। यहसबुहुमुल जाहिलु अग्निया मिन ताअफ्फुफ, जाहिल जो है ना यानी नावाकिफ, जो जिसको कोई पता ही नहीं है, वो उनको क्या समझता है, अग्निया। यहसबुहुम यानी समझता है उनको, कौन समझता है, जाहिल, एक जाहिल ही वाकई उनको अग्निया समझ सकता है। उसे वो कहता है इनको कौन सी कोई जरूरत है, हमने तो देखा था अच्छे भले कपड़े इसने पहने हुए थे, मैंने उसके कपड़े देख के और उसके बाद सोच लिया कि जो है ये तो इसको कहाँ इतनी वो है, नहीं नहीं इसको नहीं कोई जरूरत। जाहिल उसको दौलतमंद समझता है, मिना ताफ इस वजह से कि वो पाक दामनी इख्तियार किए हुए, इस वजह से कि वो मांगता नहीं है, वो हर एक से कहता नहीं फिरता कि मुझे दो मुझे दो, पीछे नहीं पड़ जाता। तो लोग सोचते हैं कि जो मांगता नहीं है शायद इसको जरूरत ही नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, उनकी खुददारी है, इस वजह से नहीं वो मांगते, इस वजह से नहीं वो हाथ फैलाते। तारिफ हम भी सीमा हम, तुम पहचान लोगो उनकी निशानियों से उनको, आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आपको पता होगा कि कहाँ से आता है इनका, क्या इनकी इनकम का सोर्स है, कितने पैसे कहाँ से आते हैं, कितने इनके बच्चे हैं, क्या इनका रेंट है, क्या इनकी जरूरियात है, तो खुद ही अगर अक्लमंद होंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किधर से इनका गुजारा पूरा होता होगा। तो तुम उनको उनकी निशानियों से पहचानोगे। और नंबर फोर बात क्या है, नंबर थ्री बात क्या थी, ताफुफ से, ताफुफ यानी वो मांगते नहीं है किसी से, और नंबर टू क्या बात थी कि वो जाहिल उसको गनी समझता है, नंबर फोर बात क्या है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो नहीं मांगते लोगों से इसरार करके, लिपट नहीं जाते किसी से, लिपट लिपट के नहीं लोगों से मांगते। यानी एक लोग होते हैं ना कि यानी वो किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं है, किसी के पीछे नहीं पड़ते। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, एक तरफ ये भी है, ये एक यानी जिस जो देने वाला है उसको तो ये कहा गया ना, तुम दो और तुम खर्च करो। भाई यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मांगना जो है ना वो इस्लाम में कोई पसंदीदा चीज नहीं है। इसीलिए कहा गया ना, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट के मांगते नहीं है, वो किसी से सवाल नहीं करते, वो अपनी हालतें ऐसी नहीं बना लेते कि लोग आके उनके सामने 2-4 रुपए फेंक के चले जाएं। तो खास तौर पे जो दीनदार तबका है ना, उनके लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है कि वो मांगे लोगों से। आजकल हमारा क्या मिजाज बन गया, आपने देखा, हर तरफ चंदा मांगने वाले हम बन गए हैं। दीनी लोग जो है ना, चाहे किसी मस्जिद में चले जाओ, मदरसे में चले जाओ, कोई पढ़ाने वाले, एवरीवेयर बस डोनेशन दे दें हमें। लोग जो है ना, यकीन करें, बाज दफा मस्जिद जाने से घबराते हैं, इस वजह से बस चले जाएंगे तो इनका तो काम ही है मांगना। रमजान में देख लें, उसमें देख लें, मांगने को पसंद नहीं किया गया इस्लाम में। वो तो खैर अपनी जात के लिए नहीं मांगते, तो इदारे के लिए मांगते हैं, मगर हर वक्त एक मिजाज बना लेना कि लोगों की जान ही ना छोड़ना, उनके साथ लिपट जाना, अब आप देंगे नहीं तो हम आपको नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, अब बैठे रहे आप लोग भी ऐसे। लिपट लिपट के मांगना नहीं चाहिए। दीनदार बंदा जो होता है ना, उसकी इज्जत उसके दीन की वजह से होती है, उसको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप नेकी में शरीक करें जरूर, मगर उनके सामने बेगर्स ना बन जाएं कि फकीर बन गए, बस लिपटे हुए उनसे, चिमटे हुए उनसे, अब जान ही नहीं छोड़ रहे। नहीं, ये सही चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे जमानत दे के कभी किसी से सवाल नहीं करेगा, तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। इतनी बड़ी बात है, तुम मुझे इस चीज की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, कभी किसी से सवाल ना करो। इसी तरह एक जगह आता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो लेने वाला हाथ ना रखो अपना, अल्लाह ताला हमें हमेशा देने वाला हाथ दे, ऊपर वाला हाथ दे, अल्लाह ताला इससे बचाए नीचे वाले हाथ देने से। लेकिन बात वही होती है कि एक दफा इंसान की झिझक खुल जाती है ना, फिर वो मांगने पे ही तुल जाता, हर वक्त इधर से ही मांगना, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, वो आग के अंगारे मांग रहा है। यानी अच्छे भले भी हैं, लेकिन बस ऐसे ही मांगते जा रहे हैं, मांगने की आदत ही पड़ गई। वो पता है क्या मांग रहा है, आग के अंगारे, चाहे वो दीन वाला है चाहे नहीं दीन वाला, कोई भी है। तो फरमाया, अब चाहे तो कम कर ले और चाहे तो बढ़ा ले। आग के अंगारे तुम अपने लिए चाहो तो कम कर लो, चाहो बढ़ा लो, ये आग के अंगारे हैं बस। आरफा के दिन एक आदमी था, लोगों से मांग रहा था, हजरत अली ने देखा तो फरमाया, आज के दिन और इस जगह तू अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगता है, और उसको दुर्रे से पीटा। इसी तरह हजतुल विदा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का माल तकसीम कर रहे थे, दो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे, आपसे सदके का माल मांगने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठा के देखा उनकी तरफ, फिर निगाह नीचे कर ली, और वो लोग जो दो लोग आए थे वो खुद कहते हैं कि आपने हमें कवि और ताकतवर देख के फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं, मगर याद रखो सदके के माल में मालदार और ताकतवर का हिस्सा नहीं है। यानी तुम अच्छे भले ताकतवर हो, सेहतमंद हो, काम कर सकते हो, काम करो। इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोड़ा भी ऊंट से गिर जाता था ना, तो कभी सवाल नहीं करते थे कि कोई मुझे उठा के दे दे। सवाल करना अच्छा नहीं है कि इंसान मांगता रहे। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाली जो हमेशा लोगों से मांगता रहता है ना, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पे गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। यानी जैसे आपने स्केलेटन देखा कितना खौफनाक होता है, ऐसे वो होगा। तो एक इसी तरह आपको वो मशहूर हदीस भी याद होगी कि एक बंदे ने आके सवाल किया, तो आपने पूछा उससे कि तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा हाँ, एक टाट है और एक प्याला है। फरमाया दी दोनों चीजें मेरे पास ले। फिर आपने उन दोनों चीजों को नीलाम कराया, कौन है जो ये चीजें खरीदता है? एक शख्स ने कहा मैं 1 दिरहम में लेता हूँ, दूसरे ने कहा मैं 2 में ले लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में वो 2 चीजें उसकी बेच दी, 1 दिरहम उसको दिया, फरमाया कि जाओ अपने घर वालों के लिए खाना पीना ले आओ, और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद के लेकर आओ मेरे पास। जब वो कुल्हाड़ी खरीद के लाया तो आपने उसके ऊपर लकड़ी का दस्ता खुद ठोंका और फरमाया जाओ जंगल से जाकर लकड़ियां काटो और ला के बेचो, और 15 दिन के बाद आना मेरे पास। 15 दिन के बाद वो आया तो उसके पास 10 दिरहम थे जो उसने कमाए हुए थे।